सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम तरीका है नाम कीर्तन, भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। इति षोडश का नाम नाम कोलिकल्मश नाशनम। भगवान की ये 16 नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इति षोडश का नाम नाम कलिकल्मश नाशनम। कलियुग का जो कल्मश है, कलियुग का जितने सारे गंदगी है, सारे युगों में से कलियुग सबसे अपवित्र है, सबसे गंदा है। सत्ययुग में धर्म पूर्ण रूप से विराजमान था, त्रेता युग में धर्म का एक पैर नष्ट हो गया, मतलब चार पैर के बीच एक पैर, मतलब 25% वॉज डिस्ट्रॉयड इन त्रेता युग। इन द्वापर युग 50% 50% धर्म खत्म हो गया था, और कलियुग में 75% नष्ट हो गए। कलियुग केवल एक पैर के ऊपर खड़ा है और वो पैर भी टूट रहा है। ये जो बहुत ही संकटपूर्ण परिस्थिति, इसको सुधारने का केवल एक ही मात्र तरीका रह गया, वो है हरे नाम व केवलम। कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरंगत। ये हरि नाम को छोड़कर और कोई उपाय या गति इस कलियुग में नहीं है। एक तो हरिनाम बिना कलियुग में और कोई भी उपाय नहीं है, और अन्य रूप से यह हरिनाम से ही पूर्ण प्राप्ति हो सकता है, सर्वसिद्धि हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु कहे कोहिलाम एई महामंत्र। श्री चैतन्य महाप्रभु इस महामंत्र को प्रदान करके बताया, मैं ये मंत्र तुमको दे रहा हूं। प्रभु कहे कोहिलाम एई महामंत्र, इहा सबे जप किया कोरिया निर्बंध। तुम सब पूर्ण रूप से संकल्प करके इस महामंत्र को जपते रहो। इस जप के कारण, इस जप के माध्यम यहां हुई ते स्वर्ग सिद्धि हुई वे तुम्हार। इस नाम के जपने से पूर्ण सिद्धि सर्व सिद्धि लाभ होगा। तो ये है महामंत्र का महिमा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से सर्वसिद्धि प्राप्ति होता है। जब अकेला निःशब्द रूप में ध्यान होता है मंत्र का तो वो है जप। संगीत के रूप में जब इस मंत्र का उच्चारण होता है वो है कीर्तन। और सब मिलकर बहुत सारे आदमी इकट्ठा होकर जब कीर्तन करते हैं तो उसे संकीर्तन कहा जाता है। तो ये संकीर्तन ही कलियुग का युग धर्म। हरेर नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिगम्यता। यह मंत्र ही एकमात्र उपाय है। पर इस मंत्र का तीन तरीका होता है जिसके माध्यम इस मंत्र का हम उच्चारण या मनन कर सकते हैं। जप, कीर्तन और संकीर्तन। इस संकीर्तन के बारे में ये चूंकि ये कली युग में ये संकीर्तन ही युग धर्म है इसके वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है। जगई संकीर्तन प्रायोई जजंती ही सुमेधस। जो सुमेधा संपन्न व्यक्ति है, सुमेधा, मेधा का मतलब है विचार बुद्धि, विचार करने का पात्रता, विचार करने का योग्यता, मेधा। तो सुमेधा जो व्यक्ति अत्यंत सुंदर रूप से विचारवान है वो व्यक्ति जानते हैं कि इस संकीर्तन के माध्यम जगई संकीर्तन प्राय। दूसरे युगों में अग्निष्ठम अग्निहोत्र आदि यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, ये सारे बहुत प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। और उस यज्ञ का अनुष्ठान होता है आग के माध्यम, अग्नि के द्वारा, अग्निहोत्र। बल्कि कलियुग में एक विशेष यज्ञ का प्रवर्तन हुआ है। कलियुग का यज्ञ है नाम संकीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन। केवल कीर्तन ही नहीं, संकीर्तन। बहुत सारे आदमी जब एकत्रित होकर भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं उसे वो है संकीर्तन। और ये संकीर्तन ही है कलियुग का युग धर्म और कलियुग का यज्ञ का तरीका। कलो कलो यज्ञ आदि संकीर्तन। कलेर दोषे नाथ कलेर दोषे निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रचेत। नवजोगेंद्र महाराज नीमी को ये उपदेश दे रहे हैं। कलियुग का एक विशेष गुण है, कलियुग का वर्णन करते हुए नवजोगेंद्र निमि को कह रहे हैं जो कलेर दोषे निधे राजन। हे राजन, कलियुग जो है ये एक दोष का निधि है, एक पाप का समुन्दर है। सारे पाप का पूर्ण समावेश ये कलियुग में होता है। इसके वर्णन करते हुए यद्यपि कलियुग दोषे निधे है, पाप का समुन्दर है, पूर्ण पाप का समावेश इस युग में हो रहा है और हर व्यक्ति इस कलियुग में पाप में निमज्जित रहेंगे, पाप में डूबे रहेंगे ये कलियुग। बल्कि इस कलियुग का एक महान गुण है, अस्ति ही एक महान गुण है, और वो गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग पर ब्रजे। केवल भगवान का नाम का कीर्तन करने से हम भौतिक जगत के जितने सारे बंधन हैं, भौतिक जगत का जितने सारे कलुषित प्रभाव है, उससे हम मुक्त हो सके। मुक्त संग परम ब्रजे, मुक्त ये बंधन से मुक्त होकर हम भगवान का परम धाम प्राप्त हो। इस भौतिक जगत के परे भगवान का आध्यात्मिक जगत है। एक ऋषि मुद्गल बहुत विचारवान थे, बहुत निष्ठापरायण थे और उन्होंने बहुत तपस्या किए थे, तो उनको स्वर्गलोक में जाने के लिए उनका अवसर मिला था। तो इंद्र ने आकर बताया कि उनको स्वर्गलोक में जाने का अवसर मिला है, आप उन्होंने स्वर्गलोक में जा सकते हैं। तो उन्होंने पूछा स्वर्गलोक कैसी जगह है, तो बोला ये स्वर्गलोक में सारे मन कामना पूर्ण हो जाता है, जो कुछ चाहते हैं वो मिलता है, वहां सुख भोग विशेष रूप से होता है, सारे सुख का समावेश स्वर्गलोक में है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो स्वर्गलोक का ये तो गुण है, स्वर्गलोक का कोई दोष क्या है क्या? बोला हां, दोष ये है कि वहां जब पुण्य जब क्षय हो जाता है, स्वर्गलोक में नया पुण्य हम नहीं प्राप्त हो सकते हैं, पुण्य के प्रभाव से हम स्वर्गलोक में जा सकते हैं, बल्कि वहां हम पुण्य कर्म नहीं प्राप्त हो सकते हैं, हमारा पुण्य केवल वहां खत्म ही होता है, जितना हम स्वर्गलोक में भोग करते हैं पुण्य खत्म होता है। और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति, जब पुण्य जब नष्ट हो जाता है, शेष हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब पुनराय पुनः इस मर्त्यलोक में, मृत्युलोक में, इस पृथ्वी में आना पड़ता है। उसका भी विशेष वर्णन हुआ है कैसे आते हैं, जब स्वर्गलोक से पुण्य खत्म होने से अचानक वहां से गिर जाते हैं, गिर जाने के पश्चात अंतरिक्ष में, मतलब स्वर्गलोक का नीचे गगन में राक्षसों हैं, तो वो राक्षस ने उसको खाता है, इसके कारण उनका इसका इतना कष्ट होता है कि वो रोने लगता है कष्ट के कारण। तब उसकी आत्मा अश्रु के रूप में, अश्रु के रूप में आंख से निकलता है या अश्रु के साथ निकलता है, वो अश्रु बिंद बारिश के साथ जमीन पर आता है। तब वो आत्मा तब एक पेड़ में प्रवेश करता है और पेड़ के बीज के अंदर या ग्रेन्स अनाज के रूप में उसको अनाज में प्रवेश करता है। जब मनुष्य उसको खाता है अनाज को, तब वो आत्मा उसका शरीर में बीज में प्रवेश करता है और उस बीज का आधान होता है मातृका माता के गर्भ में, ऐसे पुनराय वो एक मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तब ये सुनकर ऋषि ने बोला फिर अगर हमको इस मर्त्यलोक में आना है तो वहां जाने का क्या जरूरत है, वहां जाने में क्या फायदा हो, अगर हमको यहां फिर आना ही होगा, जो पुण्यमय अर्जन किए हैं, संचय किए हैं, वो पुण्य खत्म होने से अगर हमको इस भौतिक जगत में हमको गिरना होगा तो वहां जाने का क्या फायदा है। हम वहां नहीं जाना चाहता। मैं उस जगह में जहां जाना चाहता हूं, जद गत्वान निवर्तन्ते, जहां जाने से और फिर वापस नहीं आना होगा, और वो है भगवान का परम धाम, जहां भगवान स्वयं विराज करते हैं। उसे परम धाम कहा जाता है, वैकुंठ लोक कहा जाता है। और वैकुंठ के परे, वैकुंठ के ऊपरी भाग में है अयोध्या, रामचंद्र की लीला जहां हो रहा है। उसके ऊपर है द्वारका, द्वारका से परे है मथुरा, और मथुरा में है वृंदावन, और वो वृंदावन भगवान स्वयं भगवान का लीला स्थली है। परमेश्वर स्वयं भगवान है श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में बहुत सारे अवतारों का वर्णन हुआ है। 22 प्रकार के अवतार के वर्णन के पश्चात ये बताया गया कि जैसे समुद्र में, सागर में असंख्य वेव्स हैं, उर्मी या देयर मेनी मेनी इन्यूमरेबल वेव्स इन एन ओशन, जैसे सागर से बहुत सारे नदियां निकलकर फिर सागर में ही मिलते हैं, वैसे ही भगवान के असंख्य अवतार ही असंख्यो, भगवान के असंख्य अवतार भगवान से निर्गत होकर फिर भगवान से ही मिलते हैं। बल्कि एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सारे हैं भगवान के अंश, और अंश के अंश कला ये सारे अवतारों। बल्कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, गोविंदम आदि पुरुषम, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, नाना अवतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमांजो। ये ब्रह्मा जी का वर्णन है ब्रह्म संहिता में। रामादि मूर्तिषु, राम, नृसिंह, वराह, कूर्म आदि बहुत सारे अवतार भगवान के हैं, जो कला नियमे न तिष्ठन, कला आदि रूप में प्रकट है, भगवान के अंश के रूप में, भगवान के कला के रूप में, किंतु परंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम कुमान, श्री कृष्ण ही परम कुमान, परम पुरुष, परमेश्वर भगवान है, जिनमें से ये अवतारों का वर्णन हुआ, अवतारों का प्रवर्तन हुआ। इसका भी विशेष वर्णन ऐसे हुआ है, श्री कृष्ण का पहला अवतार, पहला एक्सपेंशन, पहला प्रकाश है बलराम। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही परमेश्वर भगवान, वो अवतार नहीं है, वो अवतारों का अवतारी है। उनका पहला प्रकाश है बलराम। बलराम से वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस बलराम से वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध द्वारका में इनका ये प्रकाश हुआ। ये वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ही अयोध्या में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस शंकरशन से नारायण का प्रकाश हुआ है। वैकुंठपति नारायण, वैकुंठ में असंख्य नारायण है। जैसे इस भौतिक जगत में बहुत सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, वैसे ही वैकुंठ लोक में भी असंख्य वैकुंठ लोक, आध्यात्मिक जगत में असंख्य वैकुंठ लोक, और हर वैकुंठ लोक में एक एक नारायण का विराजमान है, एक एक नारायण विराज करते हैं। उनका बहुत सारे संज्ञा या प्रतीति है, नाम है, जैसे वासुदेव, केशव, माधव, गोविंद, त्रिविक्रम, वामन, ऋषिकेश, श्रीधर, माधव, पद्मनाभ, दामोदर, नृसिंह, कूर्मा, वराह आदि एक एक रूप में, एक एक वैकुंठ में भगवान विराज कर रहे हैं नारायण के रूप। वो सारे रूप नारायण ही हैं, और उनका भी चतुर्भुह है। एक एक वैकुंठ में चतुर्भुह है, वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इस शंकरशन से महाविष्णु प्रकाशमान है। नारायण से महाविष्णु, भौतिक जगत की जो सृष्टि है, सृष्टि करने के लिए भगवान का जो विस्तार, उसे विष्णु कहा जाता है। विष्णु तीन प्रकार के हैं। पहला विष्णु जिनका प्रकाश होता है संकर्षण से, वैकुंठ का संकर्षण से, उन्होंने कारण समुद्र में लेटे हुए हैं, इसलिए उनका नाम है कारण उदक शाही विष्णु, कारण दुखशाही विष्णु, कारण उदक में या कारण समुद्र में उन्होंने लेटे हुए, कारण दुखशाही शयन किए हुए। और कारण दुखशाही विष्णु या महाविष्णु जब कारण समुद्र में श्वास लेते हैं, उनके श्वास के कारण जो बुदबुदा का सृष्टि होता है कारण समुद्र में, उस एक एक बुदबुदा है एक एक ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदोषशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, और वहां अपना शरीर से उदक या पानी निकलते हैं उन्होंने, गर्भ उदक, और वह करके अनंत शेष के सज्जा में उन्होंने लेते हैं गर्भोदोषशायी विष्णु। और गर्भोदोषशायी विष्णु के नाभि कमल से एक कमल निकलते हैं, उस कमल में ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड का प्रथम श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और एक एक अनंत ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड में चतुर्दश भुवन है, 14 भुवन, ऊपर का 7, नीचे का 7, उनका बीच में जो है सप्तम, ऊपर से जो सप्तम मंडल या भूमंडल भुवन है वो है ये भौतिक जगत, ये है इस धरती जिसे भूमंडल कहा जाता है। भूमंडल के परे है भूवरलोक, उसके परे स्वर्गलोक, स्वरलोक, उसके परे महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ये सत्यलोक में ब्रह्मा जी विराज करते हैं। भूलोक, भूवरलोक, उसके परे जो स्वरलोक वो है इंद्र आदि देवताओं का स्थान, इसके परे महरलोक, भृगु आदि ऋषियों का स्थान है महरलोक, उसके परे जनलोक, उसके परे तपोलोक, चतुष्ण आदि जो ऋषियां हैं उनका स्थान है तपोलोक में, और सर्वोपरि है ब्रह्मा जी का स्थान सत्यलोक, और नीचे का जो है सप्त पाताल, तल अतल वितल सुतल महातल रसातल और पाताल, ये हर ब्रह्मांड में ये 14 भुवन है। तो उन ये बात ये है कि हम ऊपर जाए या नीचे गए, कहीं भी हम जाए भौतिक जगत में, हमको भौतिक जगत का बंधन में हम रहते हैं। उच्च लोक में सुख मिलता है, निम्न लोक में भी सुख मिलता है, बल्कि वो सुख अंधेरा है, जिसे बील स्वर्ग कहा गया। ये जो तल अतल सुतल वितल महातल रसातल पाताल, ये सप्त पाताल में भी सुख है, बल्कि वो सुख ज्योतिर्मय सुख नहीं है। मतलब नीचे का जो जगह है वहां सूर्य का प्रवेश नहीं होता है, वो स्थान कृत्रिम उपाय से वो ज्योति अलग या ज्योति या किरण वहां होता है मणि के द्वारा, कृत्रिम उपाय से, जैसे यहां जो है लाइट बल्ब कृत्रिम उपाय से हो रहा है, अंधकार का दूरीकरण हो रहा है। बल्कि ऊपर का जो लोक है वो लोक सूर्य के प्रभाव से और चंद्रमा के प्रभाव से वहां ज्योतिष्मान है। तो ऐसे ये भौतिक जगत के परे है आध्यात्मिक जगत। इसका बहुत सुंदर विज्ञान वैज्ञानिक विश्लेषण हमारा शास्त्र में है। ये कोई मन की कल्पना नहीं है, ये कोई कहानियां नहीं है, ये सत्य है। केवल सत्य ही नहीं, ये परम सत्य है। सत्यं परम धीमहि, इस परम सत्व का ही धीर ध्यान करना चाहिए, ये परम सत्व में ही मगन रहना चाहिए। कोई काल्पनिक विचार के द्वारा, काल्पनिक अनुमान के द्वारा हम परम सत्व को प्राप्त नहीं हो सकेंगे। परम सत्व का प्राप्ति सत्य मार्ग में रहकर आगे बढ़ते हुए ही हम प्राप्त हो सकते, और ये सत्य मार्ग जो है वो है शास्त्र मार्ग, साधु गुरु और शास्त्र। साधु कौन है? जो शास्त्र के आधार पर भगवान को जानते हैं, जो शास्त्र के आधार पर भगवान को जानते हैं वो है साधु। भगवान के बारे में कुछ कल्पना करके, भगवान के बारे में कुछ ऐसे मन की भावना द्वारा चिंतन करके हम उस लोक में, उस जगत में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, भगवान को हम नहीं जान सकेंगे। भगवान को जानने के एक ही मात्र उपाय है, भगवान को दर्शन करने का एक ही मात्र उपाय है शास्त्र चक्षुषा। शास्त्र चक्षु के द्वारा भगवान को दर्शन हो सकता है, कल्पना के द्वारा नहीं। और ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र को जो जानते हैं और इस शास्त्र चक्षु के द्वारा जो भगवान को दर्शन करते हैं वो है साधु। और उन साधुओं में से जो हमें ये भगवान को दर्शन करवाते हैं शास्त्र के माध्यम, वो है गुरु। तो ये है तरीका, ये है मार्ग, साधु शास्त्र। और ये साधु शास्त्र और गुरु का जो विचार है उनमें कोई भेद नहीं होता है, सबका विचार एक ही होता है। भगवान कौन है उसका वर्णन इनके द्वारा जब होता है उसमें कोई हिचक या कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, एकदम सही। जैसे जो जिस व्यक्ति को आंखें हैं वो जब सूरज को देखते हैं, वो सही रूप से ही सूरज को देखते हैं और सूरज के बारे में उनका जो वर्णन होगा सब एक ही तरीका का वर्णन होगा। तो ऐसे ही जो भगवान को दर्शन करते हैं या भगवान को दर्शन कर चुके हैं, उन्होंने जब भगवान के बारे में बताते हैं वो सब वर्णन एक ही तरह का होता है। उनका वर्णन कैसा है? उनका वर्णन जैसे एक कंफ्यूजन आजकल हम देखते हैं, कोई आदमी बोलते हैं भगवान साकार है, कोई बोलता भगवान निराकार है। बहुत सारे आदमी बोलते हैं भगवान निराकार है, और कोई बोलते हैं भगवान साकार है, मतलब भगवान का रूप है, और कोई बोलते हैं भगवान का रूप नहीं है। देखिए इसका समाधान कितनी सुंदर रूप से हो रहा है शास्त्र में। बदंती तत्त्व विदस तत्वम जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। बदंती तत्त्व विदस तत्वम, बदंती का मतलब बोलते हैं, कौन जो तत्वविद हैं, जो तत्व को जानते हैं, परम सत्व को जो जानते हैं वो लोग अद्वयम, जो ज्ञान अद्वय है मतलब जिसका कोई दूसरा नहीं है, द्वितीय नहीं है, एकम एव अद्वितीय, उस ज्ञान की विषय में उन्होंने बोलते हैं जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। उन्होंने कहते हैं ब्रह्म को अद्वय तत्व को ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये तीन रूप में उन्होंने वर्णन करते हैं। अच्छा इसका विचार हो रहा है हाँ, ब्रह्म क्या है? ये भगवान का ही अंग ज्योति है ब्रह्म, जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। ब्रह्म है ज्योति, ये जो ज्योति है जो इस भौतिक सृष्टि के कारण है, सर्वं खल्लिदं ब्रह्म, वो ब्रह्म निराकार है। ब्रह्म के रूप में भगवान का जो अंग कांति का दर्शन हो रहा है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका रूप नहीं है, वो ज्योति है। परमा ब्रह्मेति परमात्मेति, हर जीव के हृदय में जो विराजमान है, उनका जो विराजमान रूप है वो है परमात्मा। और भगवान इति शब्द थे स्वयं, वो है, वो स्वयं है भगवान, मतलब भगवान का जो हर जीव में उनका जो उपस्थिति है, हर जीव के हृदय में भगवान जो विराजमान है वो रूप है परमात्मा, और उनका अंगद ज्योति जो है वो है ब्रह्म। अच्छा देखिए इसका भी वर्णन कितनी सुंदर रूप में हमारे शास्त्र में हो रहा है, इसका विचार और इसका विश्लेषण। जैसे सूरज है, घर के अंदर जब बैठे हुए हम सूरज को देखते हैं तो ज्योति के रूप में देखते हैं, किरण के रूप में देखते हैं। घर से निकलकर जब हम बाहर से जब सूरज को देखते हैं तो सूर्य मंडल को दर्शन होता है, और सूर्य लोक में जब हम जाएंगे तब वहां सूर्य देव को हम दर्शन करेंगे। तो वैसे ही जब हम दूर से भगवान को दर्शन होता है तो ब्रह्म के रूप में, भौतिक जगत से जब भगवान का दर्शन होता है तो ब्रह्म के रूप में दर्शन होता है। ध्यान के माध्यम जब समाधि में हम हमारे हृदय के अंतस्थल में जब हम भगवान को दर्शन करते हैं तो वो है परमात्मा के रूप में, और भगवान के साथ प्यार की संपर्क बनाने के माध्यम जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ते हैं तब हम उनको भगवान के रूप में दर्शन करते हैं। तो भगवान का रूप कैसी है? अच्छा यहां पहले तो ब्रह्म ज्योति तो हम समझ गए हैं, परमात्मा का रूप कैसी है? उपद्रष्टा अनुमंता च, परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में विराज करते हुए हमें देख रहे हैं कि हम कैसे आचरण कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। उपद्रष्टा, दर्शन करने वाला, सुपरवाइजर, हमको उन्हें सुपरवाइज कर रहे हैं कैसे हम आचरण कर रहे हैं और उस कार्य के अनुसार उन्हें हमें फल दे रहे हैं। उपद्रष्टा और अनुमानता, अनुमोदन करते हैं, हमारा आकांक्षा है, हमारा चाहना है, तो हम चाहते हैं, हमारा डिजायर्स है, हमारा चाहना है, हमारा वासना है, कामना है, ये पूर्ण करने वाला है वो भगवान। वो देखते हैं कौन कामना पूर्ण होगा, होना चाहिए, और कौन कामना अपूर्ण रहना चाहिए। परंतु उनका स्वयं जो रूप है उस रूप में उन्होंने है भगवान। अच्छा देखिए, भगवान शब्द का भी विश्लेषण हमें अब थोड़ा करने का कोशिश करूंगा। भग अस्ति इति भगवान, ये जो बाण शब्द जो है, ये बाण का मतलब है जिसके पास है, जैसे धनवान, गुणवान, रूपवान, तो ऐसे ये बाण जिसके पास गुण है वो है गुणवान, जिसके पास धन है वो है धनवान, जिसके पास रूप है वो है रूपवान। तो भगवान का मतलब है तब जिसके पास भग है। तो भग शब्द का अर्थ मतलब क्या होता है? भग शब्द का विश्लेषण करते हुए शास्त्र में वर्णन हो रहा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरजस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाम इति भगांगना। ये भग, भगा का अंग क्या है? भग का सार छह प्रकार का अंग है। भग का मतलब होता है पूर्ण ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्रस्य का मतलब पूर्ण, पूर्ण रूप से, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरजस्य, वीर्य का मतलब है शक्ति, यश, यशस्य श्रीय, श्री सुंदरता, ज्ञान और वैराग्य त्याग, ये छह गुण पूर्ण रूप में, समग्र रूप में जिनके पास है वो है भगवान। छह क्या, इस भौतिक जगत में हम क्या कभी एक को भी हम देख मिलते हैं जो कह सकते हैं कि उसके पास इसका एक भी गुण है? कोई बोल सकता है कि उनके पास सारे ऐश्वर्य है, सारे संपदा है? नहीं, चाहे वो कितना ही ऐश्वर्यवान ना हो, कोई भी नहीं बोल सकते हैं कि इस जगत का सारे ऐश्वर्य उनके पास है। वीर जो सारे शक्ति उनमें है, यश सारे यश उनमें है, सारे सुंदरता श्री उनमें है, परम सुंदर है वो, पूर्ण सौंदर्य उनमें है, पूर्ण ज्ञान उनमें है और पूर्ण त्याग उनमें है। ऐसे कोई है? यद्यपि हमारा विचार से ऐसे कोई नहीं है, परंतु हमारा शास्त्र के विचार से उनका वर्णन हुआ है, है। वो है एकम एव अद्वितीय परम पुरुष, एक एवं अद्वितीय, जिनका दूसरा या द्वितीय कोई नहीं है। एकम एव अद्वितीय मतलब ये अद्वितीय का भी वर्णन ऐसे हो रहा है, असमोर्ध, जिनके समान कोई नहीं है और जिनसे बढ़कर, जिनसे जिनके ऊपर और कोई नहीं। एकम एव अद्वितीय परम पुरुष, वो परम पुरुष वो है भगवान, वो परम पुरुष है, सब कुछ उनसे ही उत्पत्ति हुआ है, सारे सृष्टि उन्हीं का ही कार्य है, सारे जगत का पालन उन्होंने ही कर रहे हैं और वो परम पुरुष उनका गुण के अनुसार और कार्य के अनुसार, लीला के अनुसार उनके बहुत सारे नाम हैं। जैसे उनका एक नाम है राम। राम शब्द का मतलब क्या है? रमते इति राम, आनंद। रमते, रमन का मतलब है आनंद। आनंद के पूर्ण उपभोक्ता जो है वो है राम। और वो केवल आनंद को उपभोगी नहीं करते हैं, वो सारे आनंद दूसरे को भी प्रदान करते हैं। मतलब आनंद उपभोग करने वाला और आनंद प्रदान करने वाला है भगवान, इसलिए उनका नाम है राम। उन्हें सबको आकर्षण करते हैं, इसलिए सर्वाकर्षक है वो, इसलिए उनका नाम है कृष्णा। भौतिक जगत का सृष्टि उन्होंने कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम विष्णु। उन्हें समस्त सृष्टि को आयन करते हैं, समस्त सृष्टि उन्हीं के आधार पर है, इसलिए वो है नारायण। ऐसे वो एक एवं अद्वितीय होते हुए भी उनका असंख्य नाम है और वो नाम उनका गुण का द्योतक है और उनका लीला का द्योतक है। लीला का द्योतक कैसे? यशोदा माई के पुत्र के रूप में उन्होंने अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए उनका नाम है यशोदा नंदन। नंद महाराज के पुत्र के रूप में उन्होंने विराजमान है, इसलिए उनका नाम है नंद नंदन। वासुदेव के पुत्र के रूप में उन्होंने लीला विलास किए हैं, वसुदेव के रूप के पुत्र के रूप में उनके लिए उसका नाम है वासुदेव। उन्होंने गोपियों का बहुत प्यारे थे या प्यारे हैं, इसलिए वो है गोपी वल्लभ या गोपीनाथ। उन्होंने रास मंडल में अपना लीला विलास किए हैं, इसलिए वो है रास रसिक। ऐसे भगवान के अनंत कोटि नाम हैं, यद्यपि भगवान है एक। तो अब प्रश्न हो सकता है, भगवान तो एक है, बल्कि आप कह रहे हैं भगवान का अवतार भी है तो दूसरा हो गया। नहीं, भगवान का ये अवतार जो है वो है उनका स्वांश प्रकाश, स्व अंश का प्रकाश, स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवान का अचिंत शक्ति के द्वारा वो दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, सौ हो सकते हैं, हजार हो सकते हैं, परंतु वो एक ही रह जाते हैं। तो भगवान के साथ उनका ये अवतार का संपर्क वर्णन करते हुए हमारे शास्त्र में ऐसे उल्लेख हुआ है, वर्णन हुआ है कि दीपार्चि रेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विपरीत हेतु समान धर्मा जस्ताद्रिगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। दीपार्चि रेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य, जैसे एक दिया से दूसरा दिया जलाया जाता है, दीपार्चि रेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य, और दीप जलने के बाद विपरीत हेतु समान धर्म, पहला दिया और बाकी जो जलाया गया है सारे दिया का शक्ति एक ही होता है। विपरीत हेतु समान धर्म, समान ताप और समान ज्योति उससे निर्गत होता है। जस्ताद्रि गेव ही च विष्णुतया विभाति, वैसे ही विष्णु आदि बहुत सारे अवतारों का जो प्रकाश हुआ है वो परमेश्वर भगवान से ही, उनका ही प्रकाश, और भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है पहला दिया, जिससे जैसे मैं पहले बताया था पहला प्रकाश बलराम, उसके बाद वासुदेव शंकरषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, उसके बाद राम नृसिंह वराह कूर्म आदि विभिन्न लीला अवतार, नारायण विष्णु अर्थात महाविष्णु, गर्भोदोक्षाई विष्णु और क्षीरोदोक्षाई विष्णु के रूप में उनका अनंत प्रकाश हुआ है। वो स्वयं भगवान है श्री कृष्ण। एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण ही परमेश्वर स्वयं भगवान, और वो कृष्ण वृंदावन में नित्य विराजमान है। आराध्य भगवान, आराध्य भगवान कौन है? ब्रजेश तनय, ब्रजेश ब्रजराज नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण। स्तधाम वृंदावनम, उनका धाम है वृंदावन, मथुरा नहीं द्वारका नहीं। मथुरा में जो देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण, जो द्वारका में अपना लीला स्थली स्थानांतरित किए हैं, ऐसे वर्णन हो रहा है कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही है स्वयं भगवान, और उनका धाम है वृंदावनम। स्तधामो वृंदावनम, रम्मा काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेना जा कल्पिता। जिस रूप से ब्रजवधु गण उनके आराधना किए थे, वो है सर्व भगवान के सर्वश्रेष्ठ आराधना। रम्मा काचिद उपासना, उपासना आराधना ब्रजवधु वर्गे न जा कल्पिता। तो ये है स्वयं भगवान का संज्ञा, स्वयं भगवान का वर्णन। तो आज वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव लीला, आविर्भाव तिथि है, उसका ही हम उच्चापन हम कर रहे हैं और अनुष्ठान होगा मंदिर में। 10:30 बजे अभिषेक होगा और इसके बाद भगवान का भोग होगा, भगवान को भोग निवेदन होगा, और भोग के पश्चात 12 बजे जब भगवान प्रकट हुए थे इस भौतिक जगत में, उस समय भगवान को दर्शन होगा, जन्माष्टमी दर्शन। मैं शुरू में बोला था कि इस कलियुग का युग धर्म है हरिनाम कीर्तन, तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा वो कीर्तन सम्यक रूप से जब होता है तब संकीर्तन होता है, सब इकट्ठा होकर जब कीर्तन करते हैं तो वो संकीर्तन होता है, वो संकीर्तन ही इस कलियुग का युग धर्म है। तो ये संकीर्तन हम थोड़ा समय के लिए करेंगे और 5-7 मिनट तक, तो आप सब भी हमारे साथ कीर्तन करने का अनुरोध मैं करूंगा। आप करेंगे ना? ओके। मैं हरे कृष्ण महामंत्र गाऊंगा, उसके पश्चात आप भी गाइए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna.